ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம்ஜான நிதிமிராந்தாந்தலிதமே ஸ்ரீகுருவேன ஸ்ரீச்சைதன்யமனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் முதலே ஸ்வயம் ரூபகதாவிதாதிசுபாந்திதம் ஜெய ஸ்ரீகிருஷ்ணச்சைதன்யபிரபுலித்யானந்தைத்கதாதர்ஷிவாசகௌரபக்தோ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ அபி தக் ஹம்னே சர்ச்சா கியா தா, பகவான் பதாத்தே ஹை கி கிஸ் பிரகார் ஸே அசிந்த்ய பேதா பேத தத்வா अचिंत्य भेदाभेद तत्व के विषय में भगवान कहते हैं यदि भी भगवान प्रकृति के सर्जन करने वाले हैं फिर भी वो अलग हैं उससे. जैसे अगर आपका बेटा है, आपका ही क्रिएशन है, आपसे ही प्रकट हुआ है, आपसे ही उसने जन्म लिया, लेकिन फिर भी आप एक रूप से उसके साथ जुड़े भी हो और नहीं भी जुड़े हो. तो इसी तरह से जैसे एक राजा है, वो सारी सृष्टि का संचालन, सारे राज्य का संचालन करते हैं, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल भारत के जो राजा है वो भी श्रीलंका की यात्रा में गए, तो क्या ये देश काम करना बंद कर दिया? नहीं. तो अगर एक छोटा सा राजा पृथ्वी लोक का, या छोड़ो राजा के छोड़ो किसी कंपनी का मालिक अपनी फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है, कहाँ पर कौन से कोने में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सा स्टाफ कहाँ पर काम कर रहा है, इसका उसको सब पता होता है, फिर भी वो पिकनिक के लिए जाते हैं, अपने फैमिली के साथ पिकनिक के लिए जा रहे हैं. आप सोचिए क्या एक साधारण मनुष्य के लिए संभव है तो क्या भगवान के लिए संभव नहीं? भगवान के विषय में हमने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि वो प्रकृति को स्पर्श ही नहीं करते, सर्जन करने के लिए प्रकृति को स्पर्श ही नहीं करते. वो प्रकृति जड़ वस्तु है, इसलिए भगवान अपना एक एक्सपांसन बनाते हैं सदाशिव का. वो सदाशिव प्रकृति पर चेतना डालते हैं, दृष्टिपात करते हैं. भगवान की दृष्टि और प्रकृति के बीच में सदाशिव होते हैं. सो इस तरह से भगवान स्वयं कार्य उनके बिना संभव नहीं है, लेकिन उनसे इतने सारे एक्सपांसन होते रहते हैं एक साथ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कि प्रैक्टिकली वो इसमें दिखते ही नहीं कि वो काम कर रहे हैं. देयर इज द आर्ट ऑफ द सुप्रीम मैनेजमेंट दैट ही इज जस्ट बाय विलिंग. भगवान प्रसाद एक श्लोक आगे वाले श्लोक में कहा कि केवल मेरी इच्छा मात्र से ही काम हो जाता है, इच्छा करने से, इच्छा भी नहीं, ऑटोमेशन बना दिया पूरा, अपने आप ही काम करता है. ही डजंट नीड टू डू एनीथिंग. तो और किसी भी कर्म का उनको फल भी नहीं लगता, ही इज नॉट बाउंड बाय एनी रिजल्ट्स. क्योंकि जो सर्वोच्च राज्य, जो एक राजा जो होता है, वो राजा अगर किसी का हत्या भी करे तो उसको सजा नहीं होती. किंग डज नो रॉन्ग, ऐसे कहा होता है. तो भगवान भी अगर कुछ भी करे उनको किसी भी चीज़ का कर्म नहीं लगता. और ये सर्जन विसर्जन करने का कर्म, इसका एग्जांपल मैं आपको बताया था हमने, ये हाईकोर्ट का जज है, वो दिन में किसी को बोलता है कि ओके इसको छोड़ दिया जाए, इसको लटका दिया जाए, तो क्या वो रोज किसी को हत्या करता है? नहीं। तो इसी तरह से भगवान जो है वो प्रकृति के साथ जुड़े होने के साथ साथ भी अलग है। अंत में भगवान ने क्या कहा था कि प्रकृति मेरे अध्यक्षता से कार्य करती है। अधिअक्ष, अधिअक्ष का अर्थ होता है आंखों के नीचे या सुपरविजन में, है ना। अधिअक्ष माया यक्षेण प्रकृति स्वेते सचराय। तो भगवान की इच्छा के बिना प्रकृति कुछ कर ही नहीं सकती। जैसे सबसे बड़ी सत्ता कौन है, तो लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी सत्ता प्रकृति है, प्रकृति के सामने सब लाचार है, कुदरत के सामने कोई नहीं चलतू नहीं, तो प्रकृति, और प्रकृति से महान प्रकृति, उनको नहीं पता, लोगों को पता नहीं कि प्रकृति किसके आधार से चलती है। सूर्य चंद्र वो प्रभा तात्पर्य में लिखते हैं ना, एक घास का तिनका भी भगवान की इच्छा के बिना हल नहीं सकता, तो प्रकृति क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। भगवान की इच्छा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है ब्रह्मा करे न सृजन, तुम्हारा इच्छा है विष्णु करे न पालन, तुम्हारा इच्छा है शिव करे संहार, तुम्हारा इच्छा है माया सृजे कारागार। भक्तों ठाकुर कहते हैं आपकी इच्छा से शिव जी संहार करते हैं, आपकी इच्छा से माया कारागार बनाती है, ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, तुम्ही तो रक्षक आर पालक, तुम मेरे रक्षक हो, तुम मेरे पालक हो। अर्थात भगवान से स्वतंत्र संसार में कोई चीज नहीं है। He is the supreme personality of God, and everything works under him. और कोई इसका इतना सरल, प्रभुपाद ने तात्पर्य बहुत सरल रूप से समझाया है, तो इतना सरल भी अगर कोई समझ नहीं सकता और कृष्णा को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ऐसे लोगों के विषय में भगवान आगे बताते हैं कैसे होते हैं ये लोग। तो पढ़ी 11 नंबर।
जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते।
जब मैं मनुष्य के रूप में प्रकट होता हूँ तो वो सब उपहास करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, खास करके भारत में, वो लोग ऐसा मानते हैं कि मैं दो हाथ वाला हूँ, तो भगवान तो दो हाथ वाले नहीं होने चाहिए, भले तीन हो, चार हो, छः हो, दस हो, सात हो, कुछ भी हो, लेकिन दो तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं दो हाथ वाला हूँ, इसे चार हाथ वाले का मान ज्यादा होता है। और नारायण को शायद भगवान मान लेंगे, लेकिन कृष्ण को तो नहीं मानेंगे। लक्ष्मी नारायण हाँ वो भगवान है, लेकिन इसलिए उनको मानना थोड़ा आसान भी है, हाँ चार हाथ वाला, डिफरेंट फ्रॉम यू, बट कृष्ण और इट लुक्स लाइक मी, दो हाथ वाला। वो लोग क्या सोचते हैं कि भगवान जब यहाँ पर आते हैं मनुष्य रूप में तो वो मनुष्य बन जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा भगवान ने इतना सब पाप किया था, रासलीला वगैरह सब किया था, इसलिए अभी तपस्या कर रहे हैं, कुछ हीरो की तपस्या के बाद वो हमारे भगवान बन जाएंगे। सारा प्रायश्चित हो जाएगा तब। नेक्स्ट हमारा जो लीडर होगा तीर्थंकर वो बनेगा, ऐसा जैनिस मानते हैं कि हमारा तीर्थंकर बनेगा। नेक्स्ट नास्तिक, जैन को नास्तिक बोलते हैं, नराधम मनुष्य में सबसे धन मुझे नहीं जानते कौन मूड, गधे जैसे होते हैं, एकदम गधा होता है। गधे को तो गधा ही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो भगवान की एक्चुअली ऐसा है भी कि कृष्ण जब मनुष्य के रूप में आते हैं तो वो इट इज लाइक अ ड्रामा का जो एक्टर होता है वो स्टेज पर आता है तो इतना अच्छा एक्टिंग करता है कि पता ही नहीं पड़ता कि एक्चुअली ये कैरेक्टर कौन है। ये बिकम सो लाइक रामचंद्र के विषय में भी ना, न जाने जान के ना थे काल सवार सुथा, पता ही नहीं था राम चंद्र को कि सीता का हरण होने वाला है या फिर दशरथ को जय कई कई का दंश लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं पता था यार। क्यों? क्योंकि वो तो मनुष्य थे, घोड़ कपट मानुष अति श्रीमद भागवत में कहा है अति मर्त्यानि केशव घोड़ कपट मानुष। जब तुम मनुष्य के रूप में प्रकट होते हो प्रभु तो ऐसा कार्य करते हो, ऐसे लीला करते हो कि कोई साधारण व्यक्ति तो ये समझ ही नहीं सकता कि भगवान है। तुम्हारे भगवान किसी के पीछे दौड़ते, किसी के प्लेट से खाते या। और बिल्कुल बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, जंगल में जाते फिर बहुत बड़ा वो अगासुर को मार डाला भगवान ने अजगर को, है ना। अगासुर कहाँ पड़ा था, कौन सी जगह है, जगह का नाम क्या, आप ऐसे कई भक्त जा चुके शायद उधर, अजहाई खुर्द, लेकिन अजहाई जगह का नाम है। वहां पर उसी जगह पर जहाँ अगासुर को भगवान ने मारा था उसी जगह पर हमने गुरुकुल बनाया है इस्कॉन ने, छठीकरा से आगे है 15 किलोमीटर, वहाँ पर गुरुकुल बन गया है, अभी यहाँ से शिफ्ट होने वाला है वृंदावन का, छठीकरा से दूर है 15 किलोमीटर। तो अजय वहाँ पर अगासुर का वध किया था और उसी अगासुर के वध के हाईवे के ऑपोजिट साइड आई मीन वृंदावन साइड एक गांव है जिसका नाम है सेई, सेई करके गाँव है वृंदावन से करीब, सेई क्या वही है, सेई क्या ये वही बच्चे हैं जिसको मैं चुरा के ले गया था, सेई गांव का नाम है। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला उधर हुआ था। अब ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा जी चकित हो गए कि ये अगासुर को मार डाला लेकिन ये कर क्या रहा है, किसी के हाथ से खा रहा है, उनके लेफ्ट हैंड में क्या था दही का वो मस्का, मटकी, तो हाथते तो हाथ से खाने वाले लोग हैं, मटकी से नहीं खाते, तो हाथ में पूरा पूरा भर के रखा था दही, मीठा दही बटर वाला, उसके अंदर फ्रूट्स अलग अलग प्रकार के और संदेश आदि, इट्स लाइक दधी चीरा जैसा, लेकिन थोड़ा ठंडा. तो आई फॉरगॉट द सीजन ऑल्सो, सीजन व्हाट वाज द सीजन, इट वाज समर और व्हाट, आई डोंट एक्जैक्टली आई रिमेम्बर ऑल द सीजन्स. तो वो लेकर बैठे थे भगवान हाथ में, और कृष्णा के मित्र को भगवान ऐसे हाथ से उनको चटाते थे और उनकी प्लेट से खुद खा रहे थे. तो ब्रह्मा जी ऐसे सोच में पड़ते कि ये कैसे भगवान हो सकता है, ये महान इंद्र कैसे हो सकता है, सब सभी भगवान सभी देवताओं के जो परमेश्वर है ब्रह्मा विष्णु महेश सबके जिससे प्रकट हो, ये कैसे मेरे भगवान बॉस मेरे कैसे हो सकते हैं. तो उन्होंने ब्रह्म विमोहन का जो किया काम, ब्रह्मा जी मोहित हो चुके, और तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए. तो साधारण मनुष्य की बात छोड़ो, इंद्र भी नहीं समझ पाया, और ऐसे नहीं दुर्योधन तो सामने ही था फिर भी नहीं समझ पाया. इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा मूड है. इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो मूड होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि एक साधारण मनुष्य है, ऐसा सोच करके मेरी अवज्ञा करते हैं. फूल्स डिजायर मी व्हेन आई डिसेंड इन ह्यूमन फॉर्म. वो सोचते हैं कि क्रांतिकारी पुरुष थे कृष्णा, सबको उकसाने का काम करते थे, रेवोल्यूशनरी. अगर कोई लोग ठंडे लोग हैं तो वहां पर जाकर दो चार भाषण मार देंगे तो सब लोग उत्तेजित हो जाएंगे, काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ, उस प्रकार का व्यक्ति. कुछ कहते थे कि कृष्ण एक महान राजनैतिक थे, द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन इन द हिस्ट्री. किसी को इसको ये बोल दिया, उसको वो बोल दिया, इसको बोल दिया, तीनों आपस में लड़ो, खत्म करो बात. तो इस तरह से अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग रूप से मानते हैं. वो ऐसा सोचते हैं कि जब भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं तो वो भी हमारी तरह हो जाते हैं. प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, ऑल्दो द फूलिश कैनॉट इमेजिन हाउ कृष्ण हु अपीयर्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग कैन कंट्रोल द इनफाइनाइट एंड द फाइनाइट, दोज हु आर प्योर डिवोटीज एक्सेप्ट दिस, फॉर दे न्यू दे नो दैट कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड. Therefore, they completely surrender to him and engage in Krishna service, devotional service. तो भगवान को ये साधारण लोग समझ नहीं सकते, they cannot understand. विशेष करके मायावादी लोग, वो लोग ऐसा समझते हैं. वो क्या सोचते हैं, कृष्णा जो गीता कहा था तो वो कृष्ण ने नहीं कहा था, वो उसके अंदर जो आत्मा है उसने कहा था. कृष्ण तो हमारे जन्म मनुष्य है. रबर कहते हैं अगर वो मनुष्य है तो फिर भगवद गीता की वैल्यू ही नहीं रही है ना. अगर मैं भी भगवान और तुम भी भगवान तो फिर हम दोनों के बीच में उपदेश क्यों होगा. अगर मैं भी मनुष्य हूँ तुम भी मनुष्य हो तो हमारे बीच की जो बातें उसको व्यासदेव को क्या पड़ी थी लगे व्यास वेद में डाले ना? तो ये सारी जो विचारधारा है, विशेष करके जो मायावादी लोग होते हैं वो लोग भगवान की अवगणना करते हैं. वो लोग ऐसे सोचते हैं कि कृष्ण जो है वो एक साधारण मनुष्य है. बट प्रभुपाद जी का लेक्चर में कहा, वी कैन अंडरस्टैंड हु इज इंटेलिजेंट मैन एंड हु इज रैस्कल बाय दिस यू नो क्राइटेरियन. भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा, पहले बताया था, और अभी क्या कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा. एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को कहा था कि How dare you can call somebody moodha? किसी ने ऐसा कि बोले आप किसी को मूढ़ा कैसे कह सकते हो, तो मैं तुम पे केस कर दूंगा. प्रभुपाद को कहा, इसको मूड कैसे कैसे, हाउ कैन यू से दैट? देन ड्रोपा से रोको, यू आर वेलकम, आप केस कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, जिसने कहा है उस पर। भगवान ने कहा कि ये कहा है भगवान ने, तो आप भगवान पे केस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट माय वर्ड। मैं किसी को मुड़ा कहने वाला कौन? मैं तो किसी को मुड़ा नहीं कहा, लेकिन जिसको भगवान मुड़ा कहेंगे उसको मैं ठोक ठोक के मुड़ा कहूंगा। वो तो मुड़ा है ही, ही इज मुड़ा, ही इज रास्कल, ही इज 100% परफेक्ट रास्कल। रास्कल में भी कैटेगरी होती होगी ना, लेकिन ये परफेक्ट रास्कल होता है, गधा, पक्का गधा, दुराचारी गधा। गधे का साइंस तो आपको पहले किसी ने बताया ही होगा, गधा कैसा होता है, वो मूड है, उसको खाने के लिए दो चार थोड़ा घास चाहिए, वैसा सोचता है कि नहीं वो घास मुझे अपना मालिक देता है, गधा है। समर में वो तगड़ा हो जाता है और मानसून में वो पतला हो जाता है, मूर्ख है ना, क्या करें। तो ऐसे गधे जैसे लोग जो होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्णा राम जो भी अवतार लिए वो तो एक साधारण मनुष्य थे, या फिर वो एक माइथोलॉजी है। क्या बोले, माइथोलॉजी को क्या बोलते, दंत कथा, कल्पना। वाई शुड आई एक्सेप्ट कृष्ण, वो लोग क्या कहते हैं, हम कृष्ण अपने भगवान माने, नहीं हमने हमारा भगवान बना दिया है। सो प्रभात कहते हैं कि विशेष करके हिंदू नाम की जो सोसाइटी ना, हिंदू समाज, हिंदू समाज में हमारे वाले लोग सबको ही भगवान बनाते हैं। नमो नारायण, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। देखा किसी के ऐसे व्यक्ति को देखा, मैं एक बार आया था मेरे पास एक व्यक्ति, अरे आप क्यों ऐसा इतना चिंता कर रहे हो, तुम भी भगवान, मुझे पता ही नहीं था मैं भी भगवान। अच्छा, तुम भी भगवान। मैं कहा तो फिर मैं भगवान कैसे, मैं बस थोड़ा तपस्या कर लो तुम भगवान हो जाओगे, तुम्हें पता पड़ेगा, यू विल रियलाइज दैट यू आर गॉड, तुम्हें पता पड़ेगा कि तुम भगवान हो, बस तुम भगवान बन गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तुम्हें पता नहीं है ना कि तुम भगवान हो, धीरे धीरे तुम्हें जब पता पड़ जाएगा ना कि तुम भगवान हो, तब आत्म साक्षात्कार होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, और तब तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं खामखा इतना इधर उधर भर रहा था, भगवान तो मैं खुद ही हूँ। तो ये है माया वाले लोग, मूढ़ा। तो ऐसे लोग जो होते हैं मूढ़ व्यक्ति, उन लोग को क्या होता है, उन लोग का क्या परिणाम होता है, थोड़ो मजेदार स्वरूप है।
जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं।
सब निष्फल, सब कुछ निष्फल। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विजेतसा आसुरिम राक्षसिम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता, प्रकृति मोहिनी श्रिता, प्रकृति के द्वारा मोहित हो जाते हैं ये लोग, प्रकृति के द्वारा मोहित हो जाते हैं। और उनका क्या होता है, मोघाशा, मोघाशा का अर्थ होता है कि जिस एक जब वो आशा करता है तो उनको ऐसा लगता है कि एक समय पर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी आशा निष्फल हो जाती है। प्रभुपाद इसको समझा दें, मोघाशा, जो कुछ भी इच्छा करते हैं ना, जो कुछ आपने सोचा कि मैं अभी ये प्लान बनाया वो प्लान, जितने भी प्लान बनाएंगे ना सारे रिजेक्ट, सब रिजेक्ट। किसका? जो भगवान को शरणागत नहीं होगा उसका। आपके प्रभु ये कैसे संभव है? तो देखते हैं बहुत सारे मटेरियल भौतिकवादी लोग होते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े यू नो टाइकून्स बन जाते हैं, ये कैसे संभव होता है? लेकिन इन लोग का सब कुछ विफल हो जाता है। विफल का अर्थ होता है उनका किया क्या सब वेस्ट। जैसे समझ लो कि आपने एक बहुत बड़ा, बड़ी मेहनत करके, बहुत मन पैसा एनर्जी सब लगा करके एक 22 माल का बिल्डिंग मंदिर के सामने क्रिएट किया, या फिर और कहीं क्रिएट किया, एक अर्थक्वेक आया, सब साफ, सब साफ। क्या गया तुम्हें? उसका किया पैसा एनर्जी टाइम सब गया, उसको मैं कितना महान व्यक्ति हूँ। बट यू आर लॉस्ट, डिफीटेड, पराभवस्ताव अबोध जातम। पराभव, जो कुछ करते हो सब डिफीट, मोघाशा, सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो जानते नहीं है कि नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशयाय बहिरर्थमानिना। नते विदु स्वार्थ गतिम, उनको पता ही नहीं उनका असली स्वार्थ क्या है। तुम्हारा असली लाभ किसमें है वो तुम्हें नहीं पता, और तुम इधर उधर भटकोगे तो क्या होगा? सो इसलिए ये प्रकृति की जो बाह्य चमक है, यू नो, ज्यादा ग्लिटरिंग गोल्ड सोने जैसे चमक रहा है, और बहुत पैसा डॉलर और यू नो धन, सौंदर्य स्त्रियों का सौंदर्य, तो ये सब जो है वो प्रकृति का क्या बोलते हैं उसको, शाइनिंग ग्लिटरिंग है, दिखावा है, जगमगाहट है प्रकृति की। तो क्या करता है? प्रकृति मोहिनी मिश्रिता, उससे आकर्षित कर लेते हैं, जुगनू की तरह अग्नि में अंदर प्रवेश करते हैं और अपने आप का अपना विनाश कर देते हैं। प्रकृति मोहित, मोघाशा, मोघ कर्मा, उनके कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और मोघ ज्ञाना, मोघ ज्ञाना का अर्थ होता है उसका जो भी नॉलेज वो भी नष्ट हो जाता है। प्रभुपद कहते हैं मोघ कर्मणा शब्द से एक दूसरा एग्जाम्पल प्रभुपद देते हैं, इतना सब काम करने के बाद भी अगर आपको परिणाम नहीं मिलता है तो क्या माना जाएगा? तो मोघ कर्मणा नहीं माना जाएगा। प्रभुपद एग्जाम्पल बताया कि फ्रस्ट्रेशन, अनहैप्पीनेस आफ्टर डूइंग ऑल सो योर एक्टिविटीज, एट द एंड यू गेट फ्रस्ट्रेशन, एट द एंड यू आर डिसटिस्फाइड, दैट इज मोघ कर्मणा। इतना सब काम करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, मोघ कर्मा। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि महात्मा गांधी, उन्होंने भारत को बहुत बड़ा योगदान दिया, भारत जो भूमि है उसको बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन उसके अंत में जब वो बूढ़े हो गए थे तो उनके अपने ही लोगों से वो परेशान हो गए थे, महात्मा मोहनचंद जी, क्योंकि जहां पर भी जाते थे महात्मा गांधी की जाए, महात्मा गांधी की जाए, बेचारा सो भी नहीं सकता था गांधी। 5,000 लोग इकट्ठा हो जाते, महात्मा इधर आने वाले, 5,000 चिल्ला चिल्ला शोर शोर करेंगे, सो भी नहीं सकता था। और यहाँ तक कि वो इतनी तरह से फ्रस्ट्रेट और डिस्टर्ब हो गए थे कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट डाला था अपने सेक्रेटरी को कि मैं इतना निराश हुआ हूँ कि मैं मरना चाहता हूँ, ऐसा स्टेटमेंट डाला था गांधी ने। तो जो स्टेटमेंट डालने पर नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया कि महात्मा परेशान हो गए और वो मरना चाहते हैं। सो प्रभुपाद कह रहे सी व्हाट इज द सच अ ग्रेट वर्कर एंड इज बैफल्ड, इतना महान व्यक्ति जिसने पूरे भारत को आजादी दिलाई वो निराश होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुछ हाथ में लेके नहीं गया। कुछ लोग कह रहे कि उसको दूसरा जन्म मिल गया ब्रिटेन में। वो जो पहले वो है ना बर्मिंघम पैलेस, बस उसके सामने उसका घर है। Very people say that. Well, many devotees say that he has taken rebirth as prince. You know. But well, this is just, you know, we don't, I mean, I don't know anything about that. So, मोग कर्मणा मोघाशा, उसकी सारी इच्छा नष्ट हो जाती है। मोग कर्मणा, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते। और मोग ज्ञान, उसके द्वारा जितना भी ज्ञान उसने फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन तर्क वितर्क वगैरह सब किया है, अगर उसका लक्ष्य कृष्ण नहीं है तो सब बेकार, सब बेकार। ये केमिकल से वो केमिकल मिक्स करने से कितना धड़ाना होता है, क्या लाइट होती है, क्या कलर होता है, करते रहो लाइफ टाइम, कुछ नहीं मिलने वाला। दे आर नोबल विनर्स, नोबल प्राइजों को प्राप्त होती है बड़े बड़े लोग, हाँ हाईली रेप्यूटेड। मोर ज्ञान नष्ट, निराश। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर ये भी कहते हैं कि मोघासा शब्द अष्टांग योगी को अप्लाई होता है, मोघ ज्ञान ज्ञान योगी को, और मोघ कर्म कर्मकांड के लोगों को। सो इस तरह से मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा, क्या है आसुरिम राक्षसिम आसुरिम आसुरिम तो राक्षसिम आसुरिम जैसा एक शब्द वहां पर मिला था हमें, आसुरी भाव माशा, उसी प्रकार के लोग कौन मायावादी आसुरी, मायावादी को तो आसुरी कहा गया है, राक्षसी ऐसे लोग है जो कौन जो मानुषिम धनुमाश्रित भगवान को एक मनुष्य मानते हैं, ऐसे लोग। बहुत सारे कवि है, बहुत सारे राइटर है, न्यूज़पेपर में आता रहता है, उनकी जो सेक्स अर्जिस जो होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो राधा कृष्ण की लीला का उपयोग करते हैं। और राधा कृष्ण की लीला विशेष करके गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, उसमें भगवान और अपने गोपियों की अंतरंग लीलाओं का वर्णन है, उसका उपयोग करके उसको एक साधारण प्रेमला प्रेम लीला मंडू की तरह बना करके वो भौतिक रूप से अप्लाई करते हैं। दे आर सो रास्कल्स, मोर रास, दे थिंक दैट दे आर सिंपल, यू नो, कृष्ण इज जस्ट you know, young man who is always, you know, attracting the young woman, you know, as a... So, ऐसे जो लोग होते हैं, इसके विपरीत वो लोग होते हैं कि जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं, तो उनके विषय में भगवान टेक्स्ट नंबर 13 में बताते हैं, क्या कहते हैं वो?
हे पार्थ, मुक्त मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं।
भगवान यहाँ पर कहते हैं महात्मा वस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता, यही है ना श्लोक?
हाँ।
देवी प्रकृति महात्मा वस्तु महात्मा वास्तव में कौन, तो स्टैंप वाला महात्मा तो हम मानते ही नहीं कभी, महात्मा जी ये आए हैं, महात्मा वो आए, बना दिया। दुरात्मा भी उससे अच्छा हो सकता है कहीं बार, लेकिन वो महात्मा तो कैसे हो सकता है। महात्मा वस्तु माम पार्थ, एक्चुअल महात्मा क्या है, कौन है, जो दैवीम प्रकृति माश्रित, जो भगवान की अंतरंग शक्ति या साधन भक्ति में लगा हुआ है, दैवीम प्रकृति माश्रित, जो भगवान की भक्ति में निरंतर जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति महात्मा होता है। महात्मा अस्तु माम, वो करता क्या है, भजति अनन्य मनसो, वो अनन्य भाव से मेरी भजन करता है, ऐसा ही ना। पूर्ण रूप से शरणागत होता है भगवान को, पूर्ण रूप से पूरा शरणागत होता है भगवान को। जैसे प्रभुपाद का पूरा लाइफ भगवान ने खुद डिजाइन किया था। प्रभुपाद जो भी करते थे उस पर लेट कृष्ण डिसाइड, लेट कृष्ण डिसाइड, यहाँ तक उनके शिष्य भी ये बात कहते हैं कि भगवान ने चाहा तो ये करेगा, भगवान ने चाहा तो करेगा। भगवान हमारे लेटर में जयप्रता का महाराज, जिसमें जयप्रता का महाराज लिख रहे थे कि माई स्केड्यूल इज नेवर मेड बाय मी और माई सेक्रेटरी इज मेड बाय कृष्णा। सो इन द सेम वे हम सबका, अगर हम पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं भगवान को, पूर्ण रूप से, है ना। अभी दो दिन पहले हम नरसिंहदेव का मना रहे थे, तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था, इसमें ये कहा जा रहा था कि हम देखते हैं कि प्रहलाद के लाइफ में भगवान ने प्रहलाद को कितना हेल्प किया, हर सब जगह हेल्प किया, कभी उसको कोई कष्ट नहीं आने दिया प्रहलाद को, है ना। वर्स्ट सिचुएशन में भी नेवर सच थिंग हैपन, तो क्या हम भी भगवान को शरणागत है ना, हम भी तो शरणागत है ना, तो हमें भी तो ऐसा ही होगा ना, हमें भी ऐसा ही मिलेगा। तो नहीं, शरणागति का अर्थ होता है फुल सरेंडर, पूर्ण रूप से शरणागति, पूर्ण शरणागति मीन्स आपके जीवन के हर एक क्षण में आप ये चीज हमेशा याद रखते हो, लेट कृष्ण डिसाइड माय फ्यूचर, लेट कृष्ण डिसाइड माय नेक्स्ट मिनट, लेट हिम, सो इन दिस वे यू कीप कृष्ण विथ यू, आप कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखते हो, आप वही कार्य करते हो जो आपके गुरु ने परंपरा के माध्यम से बताया है, आप वो कार्य करते हो, राइट। लेकिन वो कार्य आप करते करते ये हमेशा ध्यान रखते हो कि कृष्ण इज फ्री टोटली, लेट हिम डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर ऑलवेज। मैं जब नया नया था कृष्ण भक्ति में, सो आई वॉज राइटिंग लेटर्स टू माई स्पिरिचुअल मास्टर की सुनियस गोपाल कृष्ण को सुना, आई वॉज राइटिंग, सो वॉट यूज टू राइट, कृष्ण विलिंग ये होगा, कृष्ण विलिंग, हर पैराग्राफ के एक जगह तो ऐसा ही जाएगा कृष्ण विलिंग। तो मैं सोच रहा था महाराज बार बार ऐसे क्यों लिख रहे हैं कृष्ण विलिंग, कृष्ण विलिंग का अर्थ होता है कि वो सब कुछ भगवान पर निर्भर करते हैं, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण, फुल्ली, लेट हिम डिसाइड। तो ये महात्मा जो लोग होते हैं उनका इस प्रकार का मनोभाव होता है, फुल्ली देवी क्या बोलते हैं, तो भगवान के अंतरंग शक्ति के प्रभाव में, एक होता है बहिरंग शक्ति के प्रभाव, और माया अपरतक ज्ञान होता है या प्रकृति मोहिनी सीता, आगे आ गया ना एक श्लोक, प्रकृति मोहिनी सीता, कौन सी प्रकृति, बहिरंगा प्रकृति, और ये कौन सी प्रकृति है, दैवी प्रकृति माश्रिता, ये दैवी प्रकृति के अंदर में काम करते हैं। जैसे अर्जुन का मोह होना, यशोदा माता भगवान को बांधना, तो ये दैवी प्रकृति का है, भगवान के जो भक्त होते हैं वो वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझा है, जो विद्वान लोग होते हैं वो भी वैष्णव की क्रिया बुझा नहीं समझ सकते, ये वैष्णव ने ऐसा क्यों किया, ये भगवान के जो भक्त है इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, कोई नोबडी कैन अंडरस्टैंड। वैष्णव क्रिया मतलब ये ना बुझाए क्यों, क्योंकि उनका डायरेक्ट भगवान के अंतरंग शक्ति के साथ कनेक्शन होता है। तो इस तरह से वो लोग पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं और उनकी कोई भौतिक इच्छा रहती नहीं है, दे आर नॉट हैविंग एनी मटेरियल डिजायर्स एट हार्ट, कोई इच्छा भौतिक इच्छा नहीं रहती उनकी। क्यों, क्योंकि भौतिक इच्छा का अर्थ ही होता है बहिरंग शक्ति, प्रकृति की मोहिनी वो भौतिक इच्छा है तो वो नहीं होती। इसलिए वास्तव में हम अगर निरंतर भगवान की शरणागत रहे कृष्ण भक्ति के माध्यम से तो हमें कुछ नहीं होगा, माया हमें असर नहीं कर सकती, बहिरंग शक्ति। प्रभुपाद एक जगह कहा कि माया जो है वो स्ट्रांग नहीं है, माया स्ट्रांग नहीं है पर हम वीक हैं, इसलिए हम परास्त हो जाते हैं। माया तो स्ट्रांग नहीं है, माया तो माया को जितना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कृष्ण है तो नहीं तो बहुत बड़ी बात है, अगर कृष्ण है तो बहुत छोटी सी बात है। माया भी लोग डिस्टर्ब ही हो जाए, माया का काम ये नहीं है कि मजा ले रही है आपको परेशान करके, ऐसा कुछ नहीं है। माया जो है वो कृष्ण के सामने प्रकट नहीं हो सकती, यहाँ भगवान होते तो वहां आ नहीं सकते वो, इसलिए हमें विनम्र भाव से भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। और इस शरणागति का भाव, ये विनम्रता का भाव हमें भक्तों की संगति के माध्यम से प्राप्त होता है। जितना ज्यादा आप एसोसिएट करोगे भक्तों से, विशेष करके उन भक्तों के पास जिनके पास विनम्रता है, जिनके पास शरणागति है, जिसके पास कुछ है उसके पास जाओगे तो मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जाके तुम जो उसके पास है वो देगा, है ना। तो हम ये हमें चेक करना चाहिए कि हम किसके पास क्या चीज लेने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए हमें भगवान के भक्तों का शरणागति लेना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि तात्पर्य प्रभुपाद राइट्स, द महात्मा डज नॉट डाइवर्ट हिज अटेंशन टू एनीथिंग आउटसाइड कृष्ण। महात्मा जो होते हैं वो कृष्ण से और किसी को जानते नहीं, बिकॉज ही नोज परफेक्टली वेल दैट कृष्ण इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सन, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सच ए महात्मा और ग्रेट सोल डेवलप थ्रू एसोसिएशन विद अदर महात्मा। आप सुना प्योर डिवाइन प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, ऐसा महात्मा कैसे बनता है महात्मा, दूसरे महात्माओं की संगति से। अपने आप महात्मा नहीं बनता कोई, दूसरे महात्माओं की संगति से। सो ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर एसोसिएशन, आपकी संगति की क्वालिटी इम्प्रूव करने का प्रयास करो। जनरली हमारा वो सामाजिक व्यवहार का आदत पड़ गया है ना, तो वी लाइक टू बी सोशल, हमें थोड़ा सोशल बनना अच्छा लगता है, वी लाइक बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में तो वही एक है और कुछ है ही नहीं, बट इफ यू एसोसिएट विद पीपल जस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यू नो सोशल रिलेशनशिप, अगर आप केवल सोशल बिहेव करना है, भक्तों के साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो आपको लगेगा ऐसा, आपका मन आपको ऐसा कहेगा कि आप बहुत बड़ा संगति कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा। हम थोड़ी ना भौतिक वाले के पास जाके बैठते, हम तो भक्तों के पास जाके बैठते हैं। प्रभु जी वो भी दीक्षित है, माला का जप करता है, वो भी भक्त है, सेवा करता है, अच्छे गुण देखो प्रभु जी, बुरे गुण ना देखो। वो भी ऐसा कहेंगे, लेकिन वास्तव में उसका एसोसिएशन जो होता है उसका आधार भक्ति नहीं होता है। He doesn't want, he doesn't want to improve Krishna consciousness. They just want to change the social object. That will not help much. Of course, it's better than those. ये अच्छा है कि आप उन भौतिकवादी लोगों की संगति से तो कम से कम बच के भक्तों की संगति में आ गए हो, लेकिन अगर आपको इम्प्रूव करना है तो जो आपसे वरिष्ठ है उनसे संगति ज्यादा करो, और जो आपसे कनिष्ठ है उनकी संगति कम करो, जो आपसे एक और है उसकी संगति भी कम करो। आगे बढ़ना है तो बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी करते रहो, नो प्रॉब्लम। इफ यू वॉन्ट टू एडवांस देन शुड डू दिस। Pure devotees are not even attracted by Krishna's other features, such as the four-armed Mahavishnu. They are simply attracted by two-armed form of Krishna. चार हाथ वाले को भी पसंद नहीं करता। मैंने बताया था recently कथा, आपको याद होगा। कोवर्धन गांव में, अब कोवर्धन परिक्रमा सबने किया है ना? शायद कोई बचा नहीं, सबने किया है ना कोवर्धन परिक्रमा? तो मानसी के आगे जागोगे आप? तो एक बड़ा सा मेन रोड आता है, थोड़ा आगे चलोगे तो बाजू में राइट साइड का गिरिराज का बड़ा मंदिर आता है, और थोड़ा आगे चलोगे तो लेफ्ट साइड पे दाम घाटी का रास्ता जाता है ना, और फिर वहाँ से आपकी परिक्रमा आगे होती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि दाम घाटी से ही परिक्रमा शुरू होती है, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो कुछ लोग वहाँ से करते हैं, कुछ वैष्णव राधा कुंड से करते हैं, कुछ वैष्णव कुसुम सरोवर से करते हैं, कुछ दान घाटी से करते हैं। तो दान घाटी पहले जो टर्निंग आता है लेफ्ट साइड, आई थिंक वो सौंक करोड़ है, लेफ्ट साइड एक रास्ता जाता है पहले वो रोड पे। अगर आप थोड़ा आगे जाओगे तो एक पैठा करके गांव है, वो पैठा गांव आपके राइट साइड पे आता है। हाईवे से जाओगे तो राइट साइड पे गांव आता है पैठा। उस गांव में आप अंदर जाओगे तो बहुत बड़ा सरोवर है, सुंदर सरोवर है, और सरोवर के बीच में ब्रिज बनाया हुआ है, मीन्स बनाया नहीं है, अपने आप बन गया है। बहुत सुंदर जगह है, दोनों साइड सरोवर है, और उस सरोवर को आप क्रॉस कर लेते हो, उसके बीच में आइलैंड जैसा एक जगह है, इट्स नॉट एक्चुअली आइलैंड बट इट लुक्स लाइक। तो उस जगह पर भगवान का, कृष्ण का चार हाथ वाला बड़ा प्राचीन विग्रह है, 5,000 साल पुराना, ब्लैक कलर का, कम से कम 3 से 4 फीट का हाइट होगा उसका, बहुत सुंदर विग्रह है नारायण। एक्चुअली हुआ था ऐसा कि एक बार गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पे आई थी। कृष्ण कई बार ऐसा करते थे, लीला करते करते कहीं छू हो जाते थे, और ढूंढते रहो बस जाओ, और ढूंढते 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 ये लोग इतना विवल हो गए थे कि पेड़ के पत्तों को पूछते थे। आपको, आपने देखा कृष्ण को इधर से जाते हुए? किसी फूल को पूछते थे, आपने देखा था कृष्ण को इधर से जाते हुए? इतना वो विवल थे भगवान के प्रेम। तो इतने विवल में एक बार ऐसा हुआ कि सामने हमको ये वही कृष्ण छत में बेच लेके चार हाथ वाले बन के आया नारायण बन के, और खड़ा रह गए उधर कृष्ण ऐसे। तो वो ढूंढते ढूंढते नारायण के पास आए, देखो गोपियों ने पूछा नारायण को, एक्सक्यूज मी, आपने कृष्ण को देखा है? तो नारायण ने कहा मैं ही भगवान हूँ, मैं ब्रह्मा शिव नारद ये सबका परमेश्वर हूँ, योगी मेरा ध्यान करते हैं, सारे अवतार मुझसे प्रकट होते हैं, राम नृसिंह वराह वामन ये सब मुझसे प्रकट होते हैं, ऐसे सब बोलने लगा, बोलने लगे। तो गोपियाँ उनको बीच में रुक गया, वेट वेट वेट, आपने कृष्ण को देखा है? तो एक गोपी ने कहा अगर आपने देखा है तो बताओ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है आपके पास डिस्कस करने का कि आप कौन है, कितने महान है, वी डोंट बॉदर, हमें कुछ पड़ी नहीं है। कृष्ण को अगर आपको पता है कृष्ण कहा है तो बताओ, नहीं तो हम खुद ढूंढते। तो किसी ने बोला छोड़ो यार, इनको नहीं पता, आगे चढ़ो। तो आगे नारायण ऐसे खड़े रह गए, वो भी आगे चले गए। तो नारायण तो भगवान के भक्त दो हाथ वालों को छोड़ के चार हाथ में भी नहीं जाते। They don't like you, Vishnu. Of course, it is very high understanding कि चार हाथ और दो हाथ वाला, और हम लोग करेंगे तो हम तो सहज बन जाएंगे। हमें अगर विष्णु की महानता नहीं पता, कृष्ण की महानता नहीं पता, ऐसे ही बस क्योंकि गोपियों ने किया था इसलिए हम भी करेंगे, नहीं। यू अंडरस्टैंड वाई कृष्ण इज ग्रेट, यू अंडरस्टैंड देन इज ओके। तो कृष्ण को छोड़ करके चार हाथ वाले रुपये भी नहीं जाते। वो जगह का नाम बैठा इसलिए पड़ा क्योंकि वहां से एक गुफा जाती है गोवर्धन के बीचों बीच अंडरग्राउंड। तो कृष्ण उधर से गए थे पैदल जमीन के नीचे और वहां से गोवर्धन को उठा करके खड़े बाहर आए थे। तो गुफा का रास्ता भी मैंने देखा था, लेकिन अभी उन्होंने बंद किया है रास्ता कई सालों से, क्योंकि वहां पर बड़ा अजगर आया था तो बंद कर दिया है। बट देयर इज वेरी नाइस व्यू। अगर आप मंदिर के बाहर आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ रोड पर, तो गोवर्धन का जो व्यू मिलता है ना, ऐसा व्यू बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि गोवर्धन और उस मंदिर के बीच में बड़े पेड़ है ही नहीं, खेती खेत है, तो इसलिए आपको लंबा गोवर्धन दिखता है पूरा। नाइस व्यू ऑफ गोवर्धन। सो भगवान के जो भक्त होते हैं वो देवी प्रकृति के संरक्षण में कार्य करते हैं, और इस प्रकार के जो भगवान के भक्त होते हैं वो करते क्या है, अगर वो देवी प्रकृति के अंदर में काम करते तो क्या करते, व्हाट दे डू। पढ़िए।
ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं।
हाँ, महात्मा जो होता है निरंतर भगवान का गुणगान गाते हैं। क्या क्या है इसमें, एक तो है always chanting my glories, endeavoring for with great determination, bowing down before me, वो प्रणाम भी, नति, नति भी, कृष्ण क्या बोलते हैं, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक नाम, है ना, prescribed chanting, 16 माला करेंगे, 25 माला, 64 माला, है ना, कृष्ण कीर्तन गान वो गान भी कर, सॉरी बोल सर, संख्या पूर्वक नाम गान, उनका गान भी इतना प्रेयर्स करना, इतना कीर्तन करना फिक्स, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, नति भी का अर्थ होता है दंडवती करना, प्रणाम करना, वो भी फिक्स नंबर का प्रणाम, जैसे रघुनाथ दास 1000 प्रणाम करते थे रोज, 1000 डिवोटीज को प्रणाम करते थे गिन करके। सो संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, व्हाट एल्स दे डू, माम शब्द दो बार यूज हुआ है इसमें, भगवान यहाँ पर माम शब्द को एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि और किसी और कुछ नहीं, वो लोग और किसी के पास नहीं जाते, वो केवल मेरे ही पास आते हैं। कौन लोग, कौन, महात्मा, महात्मा लोग वो केवल मेरी शरण में करते हैं और मेरी ही सेवा करते हैं। और महात्मा शब्द का अर्थ ये नहीं होता कि आलसी पड़ा रहता है कोने में, दो चार माला कर लेगा, सब लोग प्रणाम करेंगे, प्रभु जी बहुत अच्छा माला करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, प्रणाम करेंगे सब, और अपना मठ बना करके धर्मशाला बना के खाएगा पिएगा सो जाएगा। कई मंदिर मठों में जनरली ऐसा देखा जाता है कि वो लोग क्या करते हैं, दान दक्षिण आती है उससे उनका गुजरन हो जाता है, सुबह उठते न्याय की तरफ पड़े रहते, खाना खाते और सो जाते, और लगेगा क्या कि महात्मा है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सैफरन कपड़े और पूरा कपोल पूरा भर के दुनिया भर के तिलक लगाएंगे, कहेंगे क्या अपने आप को महात्मा, हाथी के ऊपर जाएंगे। सो इस प्रकार के महात्मा नहीं, प्रभुपाद कहते हैं कि आलस्य को भक्ति में स्थान नहीं है। जो भक्त होता है वो आलसी नहीं होता, अरे जो आलसी है तो भक्त नहीं बन सकता, अर्थात उसको आलस्य निकल जाएगा उसका अगर वो भक्ति स्वीकार करेगा तो। भक्त का काम होता है सक्रिय, एक्टिव, बिजी, व्यस्त। भक्त बैठा नहीं रहता। Prabhupada says that if somebody says I will chant sitting down, who will notice? I will do and people will think I am chanting. This kind of chanting is not allowed. मैं से बैठ करके जब करूँगा, ध्यान सिख दमाके बंद करके समाधि लगा करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Then you are doing that. लोगों को लगेगा कि हाँ प्रोजेक्ट कितना ध्यान वाला कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भक्त आए थे कि कोई थोड़ा सा भगवान के विषय में सोचते ही आँख में पानी आ जाता है। मैंने कहा कि आपको ये वीकनेस से निकलना पड़ेगा बाहर, क्योंकि आपका भाव का प्रदर्शन नहीं है, आपके हृदय की दुर्बलता है। फिर बट द पॉइंट इज दैट डोंट ट्राई टू शो ऑफ। आंसू लाकर दिखाओ मत लोगों को कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। So anyway, I mean, I'm not criticizing, but the thing is, you cannot, you know, make a show off. You can't cheat. जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि उनको प्रतिदिन 16 माला जप करनी पड़ेगी। And Prabhupada is so clear, you are not Haridas Thakur. You are not able to chant all the day and night. You know, it is something which is present. You cannot do at present. You cannot do. आप Haridas Thakur नहीं हो, आप पूरा दिन रात माला नहीं कर सकते. Prabhupada is very clearly saying, 16 rounds of japa is the minimum requirement, and that takes no more than 2 hours. Prabhupada स्पष्ट कहा है. मैं ये भी बता दूं कहाँ कहाँ, हवाई 1975 क्या कहा प्रभुपाद ने, 16 माला मस्ट है और वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं होता है। वेरी क्लियरली ऐसे, क्योंकि कुछ वक्त आते मेरे पास, प्रभु जी 3 घंटा होता है मेरा, प्रभु जी 4 घंटा होता है मेरा, प्रभु जी मेरा 2.5 घंटा, प्रभु जी मेरा 5 घंटा। मैंने कहा क्या कीर्तन करते हो आप, 5 घंटा हो रहा है। नहीं, 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 घंटे से ज्यादा होता है इसका अर्थ है कि यू आर नॉट चैंटिंग प्रॉपरली, आप अटेंटिव नहीं हो। हाथ में माला है और हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और घुमाते नहीं हो हरे कृष्णा व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। या फिर आप माला कर हरे कृष्णा, हाँ क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, ओह हाँ, फिर आधा घंटा लगा दिया उसके अंदर, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी मेरी मालाई खत्म हो गई, 5 घंटा हो गए। तो कैसे होगी भाई, तुम ठीक से जप नहीं कर रहे हो। अगर आप ढंग से जप करोगे, ध्यान से जप करोगे, 2 घंटे ज्यादा नहीं ही लगेगा। 1.5-2 घंटे के बीच में आपका फिनिश हो जाता है, 1.5 घंटे के आसपास। 6 दैट लीव्स 22 आवर्स स्टिल देयर। प्रभुपाद सेज 22 घंटा फिर भी बचा आपके दिन में। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ होता है युद्धस्व माम अनुस्मर, मुझे चिंतन, मेरा चिंतन करो, युद्ध करो, बैठे नहीं रहो। राम कामा क्या आगे, राम कामा नहीं विश्रामा। राम काम में भगवान के श्राम विश्राम नाम की चीज नहीं होती है। एक्टिव, वेरी एक्टिव, बिजी, व्यस्त रहो। प्रभुपाद एक जगह इसी में कहा, प्रभुपाद ने इसी लेटर में अंत में एक्चुअल में कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को विकसित करने में आगे बढ़ाने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है, लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, हम सब भक्तों की एनर्जी इकट्ठा होकर सब एनर्जी आएगी। अगर हम हमारी एनर्जी देने में कंजूसाई करेंगे तो हमारी ओर से कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। इसलिए हमें दिन रात एक करके काम करना चाहिए। क्यों ये सब महात्मा लोग, सन्यासी लोग इधर उधर घूमते रहते, प्रचार करते, क्यों? क्या उनका कोई फैमिली लाइफ नहीं होती है? क्या उनका सन्यासी है, उनको कोई अपनी बॉडी की परवाह नहीं, उनको नींद नहीं आती, क्या रोग नहीं होता, क्या उनको थकावट नहीं लगती? ये लोग, ये जो गुरुजन है ना, ऐसा कैसे थकते हैं? ऐसा आप शायद साल में एक बार थकते होंगे, पता नहीं कब। ये लोग रोज इस तरह से थकते हैं, पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरा। क्यों? कृष्ण के लिए गाया कर रहे हैं निरंतर। वी हैव एवरीथिंग विद अस, वी हैव टू एग्जीक्यूट। हमारे पास सब कुछ है, प्रभुपाद ने हमें सब दिया है, हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद ने, हमारे गुरुजनों ने सब कुछ दिया है। किस तरह से हम एक एक क्षण का उपयोग करें भगवान की सेवा में? वी हैव टू मेक अवर माइंड स्ट्रांग एंड एग्जीक्यूट इट, इवन दो यू मे नॉट फीलिंग टू डू इट, बट यू फोर्स योर सेल्फ टू डू इट। आपको लगेगा कि नहीं करना है अभी, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, नहीं, फोर्स करो अपने आप को। क्या बोलते हो उसको, हम कई बार, कई बार एग्जाम्पल देता हूँ ये, विशेष करके जो प्रीचर्स होते हैं उनको, क्या कि प्रीचिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, उसके ऊपर उसमें डूबना पड़ता है, यू नो, डाइव इनटू इट, अंदर कूदना पड़ेगा, देन यू कैन प्रीच। ये कहना ऐसा नहीं कि आप बाहर खड़े खड़े छोड़ा ऐसे फैला दिया, यू नो, और प्रचार कर, मैं भी कर रहा हूँ प्रचार, ऐसा नहीं, यू हैव टू कैरी इनटू इट एंड टेक इट एज योर टास्क, पर्सनल टास्क, एंड डू इट, यू विल बी सक्सेसफुल। अरे वो कर ही रहे ना प्रभु जी, सब लोग प्रीचिंग करें तो आराम कौन करेगा? एक एक चीज तो मैं करूं, वो प्रचार कर रहे, वो प्रचार कर रहे, वो प्रचार कर रहे, यू ऑल्सो डू। तो कृष्ण भावनामृत को बहुत एनर्जी की आवश्यकता है। कीर्तन की शब्द का अर्थ होता है भगवान के गुण और महिमा का प्रचार करना। नित्य युक्त का अर्थ होता है जो हमेशा अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ महात्मा। अभी 15वें श्लोक में भगवान उन लोगों की बात करते हैं कि जो कृष्ण को अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली पूजा करने का चेष्टा करते हैं, हालांकि उनको पता ही नहीं है कि कृष्ण की पूजा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन इनडायरेक्टली, लेकिन वो लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, दूसरे किसी को भगवान का स्वरूप मान करके, भगवान मान करके, जैसे मुझे कोई भगवान नहीं मानता ऐसे, लेकिन मेरी उंगली को भगवान मानता है, ऐसे, like that, उस प्रकार के लोगों की भगवान चर्चा करते 15वें श्लोक में। पढ़िए।
अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं।
तीन चीज है, एकत्वेन, पृथक्त्वेन, बहुधा विश्वतो मुखम। बहुना बोल सर, बहुधा विश्वतो मुखम, एकत्वेन, पृथक्त्वेन, बहुधा विश्वतो मुखम। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य इसमें लिखा है कि महात्मा और सुकृति के विषय में सातवें अध्याय में बताया। ओके, हाउ बिग द पर्पल इज, हाउ बिग इज, वन फुल पेज, शो वेयर इट इज, बड़ी नाइस पर्पल।
ये श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं।
हाँ, प्रभुपाद क्या बताया, पहला महात्मा कहलाते कौन, जो डेफिनेशन दिया है।
शुद्ध
फिर
तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं।
तो वो कौन होते हैं, सिक्रेटिस्ट, अच्छे लोग।
इनमें से कुछ का वर्णन आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी भिन्न होते हैं। इन्हें तीन कोटियों में रखा जाता है।
ये लोग सुकृति से नीचे हैं। इन लोग के ऊपर आता है चार सुकृति और उनके ऊपर आता है महात्मा। तो ये सुकृति से नीचे के लोग हैं, जिसकी चर्चा पहले सातवें अध्याय में थोड़ा किया था, ज्यादा नहीं था। तो अभी इसमें ये तीन प्रकार के लोग का वर्णन है, पढ़िए कौन है। तो
पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले,
एकत्व, जो भगवान के ब्रह्म स्वरूप को मानते हैं। ब्रह्म स्वरूप का अर्थ होता है भगवान का प्रकाश, और वो ऐसा मानते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं हूँ ब्रह्म, एक ही है, एक स्वरूप मान करके। यस।
दूसरा, परमेश्वर को किसी मनोकल्पित रूप से रूप की पूजा करने वाले।
हाँ, ये लोग है पृथक्त्व ना, जो अलग अलग देवताओं है ना, अलग अलग देवताओं का पूजा करते हैं भगवान मान करके, विशेष करके मनोकल्पित रूप, कैसा कोई रूप बना करके उनकी पूजा करते हैं। फिर
तीसरा, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले।
यस, तो ये तीन विश्व रूप का मीन्स भगवान का सर्व व्यापक विराट, ये तीन में से इसमें भी कैटेगरी है, एकत्व है वो लोएस्ट माना जाता है, उससे अच्छा होता है पृथक्त्व, और उससे अच्छा होता है विश्वतमो का, और उसके बाद आता है सुकृति।
दुष्कृति
ये तीन से नीचे जाते हैं, वो उसका वर्णन हो गया पहले, मूढ़ा। यस।
इनमें से सबसे अधम वे है जो अपने को अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है।
हाँ, तो हमने बताया ना कि वो जो असुरी प्रकार के बात अपने आप को भगवान मानने वाले लोग हैं, और प्रभुपाद यहाँ तक की कहते हैं कि इनका प्राधान्य भी है। प्राधान्य मीन्स मेजोरिटी पीपल आर लाइक दिस।
ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं, और इसी मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार के ईश्वर पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है।
हर एक रूप से देखा जाए तो भगवान से कुछ भी भगवान से स्वतंत्र है कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। तो अगर वो किसी की पूजा करते हैं, ब्रह्म की पूजा करते, तो सर्वकलोयम ब्रह्म, सब कुछ ही ब्रह्म है। तो इस तरह से वो भगवान की डायरेक्ट अप्रत्यक्ष भाव से पूजा करते हैं। अगर मैं ये माइक के स्टैंड की पूजा करता हूँ, यही भगवान है, तो ये माइक का जो स्टैंड है वो तो भगवान की शक्ति का अंश है ना, तो भगवान इसमें भी विराजमान है ना, देख देते हैं।
कम से कम ऐसा भाव तो प्रदान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूछते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी रूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं।
हाँ, कोई देवता है, इंद्र चंद्र वरुण आदि सबको ऐसा कहते हैं ना परमेश्वर है, उनकी श्रद्धा भी बहुत होती है, और उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि ये भगवान नहीं है। उनकी विषय में कुछ बताओगे तो सुन नहीं पाएंगे अगेंस्ट में, ऑफकोर्स वी नेवर से अगेंस्ट, बट यू नो दे कैन नॉट बेयर इट। यस।
तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है।
हाँ, ये ब्रह्मांड जो है भगवान का विराट रूप, विश्वतोमुखम, सब जगह परमेश्वर का वास है, तो दैट इज बेटर। दे डोंट कंसीडर सम डेमिगॉड एज ए भगवान, किसी देवता को भगवान नहीं मानते, बट द गॉड इज एवरीवेयर, ऐसा मानते सब जगह व्याप्त है, सो दे आर बेटर देन दोस। सो इस तरह से ये तीन प्रकार के जो स्टेजेस है उसमें एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोन्मुखम। तो पृथक्त्वेन वाले जो लोग होते हैं वो देवताओं की पूजा करने वाले होते हैं और वो लोग यतम तत्वपत को मानते हैं। प्रभुपाद कहते हैं दे बिलीव यतम तत्वपत। यतम तत्वपत का अर्थ क्या होता है?
जो चाहे वो रास्ता ले सकते।
मैं सोचता हूँ कि ये ट्रेन दिल्ली जाती है तो उसमें बैठ गया। कोई सोचता है बॉम्बे वाली ट्रेन दिल्ली जाती है तो उसमें बैठ गया। जो इसको जो ट्रेन में बैठा बैठ जाओ, सब जगह एक ही लग से नहीं पहुँचते, लेकिन ऐसा मानते हैं लोग। सो इस तरह से भगवान ने एकत्व पृथक्त्व विश्वतोमुखम जो बताया अभी, एकत्व तो भगवान नॉर्मली आगे बता दिया था 11-12 में, जो भी हमने चर्चा किया था कि जो लोग भगवान के स्वरूप को ब्रह्म को मानते, भगवान को मनुष्य शरीर को नहीं मानते, है ना, उसके विषय में हमने आपको बताया था मूढ़ है एकत्व है ना। लेकिन ऐसे दूसरे प्रकार के जो लोग हैं विश्वतोमुखम, कि जो भगवान को सब जगह देखते हैं, तो विश्वतोमुखम जो है वो भगवान अभी आगे तीन श्लोकों में बताते हैं, पर तीनों से साथ ही पढ़ लेना।
किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, किंतु मैं ही कर्मकांड,
हाँ मैं यज्ञ, यज्ञ का जो सार है वो मैं हूँ, यज्ञ मुझे प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। फिर
पितरों को दिया जाने वाला तर्पण,
हाँ पितरों को जो तर्पण होता है वो मुझे ऑफर करके दिया जाता है, नहीं तो उसका काम नहीं करता। पितरों को अगर आप भगवान को भोग लगाए बिना पितरों को खिलाओगे तो पितरों को काम में नहीं आएगा वो। फिर
औषधि,
हाँ औषधि, तो वास्तव में जो औषधि की शक्ति है किसी को जीवन देना, किसी को हाथ पाँव चलाना, तो ये औषधि कैसे काम करती है? भगवान की शक्ति उस पर रखते तब वो काम करते हैं, जो नहीं काम करते। फिर
दिव्य ध्वनि मंत्र,
मंत्र भगवान का जो जितने भी मंत्र है शास्त्र में वो सारे मंत्र भगवान का स्वरूप माना जाता है। उत्तम श्लोक नाम है भगवान का एक। फिर
घी,
वो एक साथ ही सब चीज,
घी अग्नि तथा आहुति,
हाँ घी अग्नि और आहुति और यज्ञ के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो वो भगवान कहते हैं मेरे कारण प्रकट होता है इसलिए यज्ञ होता है। फिर
मैं इस ब्रह्मांड का पिता,
पिता हूँ। अभी पिता कैसे हुए? फिर ब्रह्मा जी तो हमें पता है कि उनकी नाभि से प्रकट होते, तो माता बन गई, पिता कैसे बने? हम बीज प्रदा पिता, भगवान कहते हैं कि मैं बीज देने वाला पिता हूँ। और ऐसे देखा जाए तो सारे ही वंश उनसे प्रकट होते हैं। हाँ पिता, फिर
माता,
माता
आश्रय तथा पितामह हूँ।
आश्रय माता जगतो, पिता नमस्ते जगतो, माता धाता पितामह, तो मैं आश्रय हूँ, सबका आश्रय, अंतिम आश्रय मैं हूँ, सपोर्ट है, और पितामह भी मैं हूँ, सबका दादा, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी जन्म मुझसे हुआ था। फिर
मैं ये जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ।
हाँ जानने योग्य भगवान 15वें अध्याय में कहते कि मैं ही अंतिम ज्ञान का अंतिम स्वरूप मैं हूँ, और मैं शुद्ध करने वाला हूँ और ओंकार हूँ। फिर
मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ।
ये तीनों वेद से, तीन वेद जो ज्ञान का स्वरूप है वो भी भगवान स्वयं कहते वो मैं हूँ। फिर
मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र।
हाँ तो भगवान अंतिम लक्ष्य है सबका, गोल सबसे अंतिम लक्ष्य भगवान है, वही पालन करने वाला है, स्वामी भी वही है, साक्षी भी वही है। ये सब चीज भगवान ने करके बताया। अंत में भगवान ने कहा कि मैं सबसे बड़ा मित्र, सबका सबसे करीब का मित्र। फिर
मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ।
यस, तो इस तरह से भगवान का विराट रूप का दर्शन हमें प्राप्त होता है। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहा था कि आई एम स्पिरिचुअल स्पार्क, मैं अगर अंश हूँ, एक आई एम स्पिरिचुअल स्पार्क, एक कण हूँ, तो कहाँ से प्रकट हुआ मैं? भगवान से। भगवान कहते हैं मम अंश हो, तो ये मेरा अंश हो, अर्थात भगवान हमारे पिता हुए क्योंकि मैं उनका अंश हूँ। इसलिए हम बार बार कहते हैं ही इज द सुप्रीम फादर, ही इज द सुप्रीम फादर। एंड प्रकृति, तो स्वभाव प्रकृति को जैसे ना, आपकी प्रकृति क्या है, तो प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं करती, माँ प्रकृति माँ है, तो अपने आप में कुछ नहीं करती। प्रकृति किसी की शक्ति होती है, यू नो। आपकी प्रकृति क्या है कि आप अच्छा बोलते हो, तो आपकी प्रकृति है, बट किसी की प्रकृति है ना, स्वतंत्र नहीं है, शक्ति है, लेकिन शक्तिवान होना चाहिए, अकेली शक्ति क्या करेगी। तो शक्तिवान कौन है? वह है भगवान। तो इस तरह से भगवान ने अपने विराट रूप के विषय में बताया। अभी भी एक श्लोक बाकी है।
हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत, दोनों मुझ ही में है।
यस, तो भगवान ने यहाँ पर क्या कहा कि जो गर्मी, जो समर की अभी जो गर्मी है, वो गर्मी भगवान का स्वरूप है, जय हो, उनको प्रणाम करो कि वे इतनी गर्मी है। तो ये गर्मी जो होगी वो बारिश को रोकेगी, बादल को रोकेगी और बारिश बरसाएगी। भगवान कहते हैं ना कि मैं उसको रोकता हूँ फिर बारिश बरसाता हूँ, सो शुड नॉट बी डिस्टर्ब विद द हीट। और भगवान कहते हैं कि अमरत्व मैं हूँ, अमरत्व भी मैं हूँ और मृत्यु भी स्वयं मैं। मृत्यु जो है भगवान को कुछ सीधे ढंग से नहीं आता है भगवान के सामने, तो लेकिन उसको मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा ना, मृत्यु भी मैं हूँ तो मेरे पास तो आना ही पड़ेगा। और सत और असत ये दोनों ही भगवान में वास करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्णा इज बोथ मैटर एंड स्पिरिट, द जाइगेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म कंप्राइजिंग ऑल मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो कृष्णा, एंड हिज पास्ट टाइम इन वृंदावन एज टू हैंडेड श्याम सुंदर प्लेइंग ऑन अ फ्लूट आर दोज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। सो हालांकि भगवान ये सब कुछ अपनी सृष्टि से करते हैं, अपने प्रकृति से, अपनी शक्ति से, अनलिमिटेड शक्तियां भगवान की, तो सारी शक्तियों से ये सब करते फिर भी भगवान इसे सेपरेट होकर के यू नो इज टोटली अलूव फ्रॉम ऑल दिस थिंग एंड सर्विंग, आई मीन गेटिंग सर्व्ड बाय हिज डिवोटीज, यू नो फ्लूट बजा रहे वृंदावन में। सो इस तरह से यहाँ पर हमें ये समझ प्राप्त होती है कि किस तरह से कृष्णा विश्वतोमुखम है सब जगह। और अभी 20 और 21 में पृथक्त्व ने बताया गया है, पढ़िए 20।
जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं।
तो जनरली जो वेदों की स्टडी करने वाले होते हैं वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सोमरस का पान करते हैं। सोमरस क्या होता है? स्वर्गीय मदिरा, स्वर्ग का पान सोमरस का पान करते हैं। दो चीज बहुत फेमस है वहाँ का स्वर्ग का, अगर आप स्वर्ग में जाओ तो अगर पता है कहाँ पर क्या फेमस है तो एक है सोमरस, एक फेमस है सोमरस वहाँ पर। कभी स्वर्ग में जाओ तो किसी को पूछ सकते हो यहाँ सोमरस कहाँ मिलता है। स्वर्ग में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ये वहाँ पर जाके एक दो चीज फेमस है वहाँ का, वो क्या बोलते हैं अट्रैक्शन पॉइंट्स, प्लेसेस टू बी विजिटेड, तो उसमें एक है नंदन कानन। तो एक सोमरस वहाँ का फेमस है, एक नंदन कानन बहुत फेमस है। नंदन कानन एक पार्क है, बगीचा है, जिसमें देवता लोग ऐसे सोमरस पी पी करके अप्सराओं के साथ विहार करते हैं। बहुत सुंदर बगीचे है, उसमें सरोवर जैसे है, फिर वो फुवारे हैं, और बहुत सुंदर जगह है नंदन कानन। सो वो लोग वेद पढ़ते हैं, सोमरस का पान करते हैं। कौन? ये वेद पढ़ने वाले लोग सोमरस पीते हैं और स्वर्ग लोक में जाते हैं और मेरी पूजा करते हैं इंडायरेक्टली। जब उनका सब नष्ट हो जाता है इन, इन, वो आगे पहले चर्चा हो गई हमारी, नेक्स्ट लोक में पढ़ी वही बताया है।
इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्युलोक को मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है।
तो ये बता दिया एकत्व तो मूड है, बताया 11-12 में विश्व तो मुखम के विषय में बताया कि मेरा अलग अलग स्वरूप बताया कि मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, मैं उधर। अब पृथक में क्या है कि वो लोग देवताओं का वो जो हाईलाइट एरिया है नंदन कानन सोमरस वो सब करते हैं, ये सब के पुण्यक्षीण होते हैं, उनको वापिस फेंका जाता है। और यहाँ पर क्या कहा है कि जब वो वापिस आते हैं कहाँ पर मृत्यु संसार वर्तमान मृत्यु संसार है। श्लोक क्या है?
तेतम भुक्त्वा
स्वर्गलोकं
विशालं
फिर
क्षीणे पुण्ये पृथिव लोकं विशन्ति
मर्त्य लोकं क्षीणे पुण्ये, उनके पुण्य जब क्षय हो जाता है क्षीण हो जाता है तो मर्त्य लोकं विशन्ति। कई बार हम कहते हैं ये कि अगर आप प्लेन में जाते हो आकाश में उड़ते हो तो आपका फ्यूल खत्म होने तक का वेट कर सकते हो कि पूरा फ्यूल आज तो उड़ने को मिला है उड़ाई दो बस चलते उड़ते रहो उड़ते रहो पूरा फ्यूल 100% जीरो हो जाए तब नीचे आ जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर ही चले जाएंगे सर, नीचे नहीं आएंगे। सो उसी तरह से क्रेडिट जब आपका कुछ बाकी रहता है ना कुछ पुण्य बाकी रहता है तो उसको नीचे फेंक दिया जाता है, तुम चले जाओ नीचे वो ध्यान ओनली यू कैन सर्वाइव। सो अनदर एग्जांपल क्रेडिट लिमिट, आपकी क्रेडिट लिमिट के आगे आप नहीं जा सकते, आपका सर्विस बंद कर दिया जाता है। तो इसी तरह से आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वो तुरंत आपको भेज देते हैं मृत्यु लोक में आ जाने के। और भगवान क्या कहते हैं आगे, ऐसे लोग का होता क्या है, ये तीन वेदों का आश्रय लेकर के इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, बस खाओ पियो ऐश करो, इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को क्या होता है?
मृत्यु का चक्र ही मिल पाया।
फेरिस व्हील जैसा प्रभात कहते हैं, फेरिस व्हील। फेरिस व्हील में क्या होता है? ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, यही का क्या ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तन। ऊपर जाए कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक के डुबाए, कभी स्वर्ग में ऊपर जाएगा कभी नरक में डूबेगा। और यही इसी तरह से भोग की सुख इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति के लिए इधर उधर मुंह मारता रहेगा, नाना योनि सदा फिरे कर रहे भक्षण करे, नाना योनि सदा फिरे बहुत सारी योनि में घूमता रहेगा और कर दे भक्षण करे। नहीं खाने का भी खा लेगा, ताते जन्म अध पाते जाएंगे। ऐसा लोग का धीरे 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 बड़ा उनका वो है भी, क्या बोलते हैं उसको, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, तमो द्वारम जो भोग करने वाले हैं, जो भोग करने वाले हैं उनके लिए नरक का रास्ता खुला पड़ा है। सो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन वॉज अलाउड टू एंटर इन टू द हेवनली प्लैनेट्स इन हिज ओन बॉडी सिंपली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। स्वर्ग में एंट्री मिला था भगवान अर्जुन को, लेकिन कृष्ण ने अरेंज करके दिया था इसलिए, बट अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। जब मैं छोटा था करीब 15-16 साल का, 16 साल के आसपास, तो इसको उनके भक्तों ने एक कंप्यूटर गेम बनाया था, तो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल द गेम्स, गेम्स खेलना वॉज लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ, बचपन में बहुत खेलता था गेम्स। तो जब मुझे पता पड़ा कि अरे वाह तो भगवान के भक्तों ने ही गेम बना दिया है, तो हम उसको ही खेल दे। तो गेम ऐसा था, देयर वाज अ गेम जिसमें 14 लोक होते हैं, 14 प्लैनेट सिस्टम होगी, और फिर आपको जाना होगा एक एक लोक पार करके, बूर फोर्स और ऐसे एक एक लोक पार करके आपको जाना है वैकुंठ धाम में, ऐसा गेम बनाया। तो आपकी अगर दिशा चेंज करोगे आपको वो दिया जाता है विमान, आपको दिशा चेंज करोगे तो आप पाताल लोक में भी जा सकते हो नीचे के 7 लोक, और दिशा चेंज करोगे तो ऊपर के 7 लोक इस तरह से जा सकते हो। तो मैं तो बहुत बहुत खुश हो जाता हूँ, ऐसे आएगा परव्योम आया ऐसे लिख के, नाउ इज अ परव्योम, नाउ इज अ यू नो आउटर स्पेस, ऐसे नाउ इज अतल लोक ऐसे लग गया, नाउ इज अतल लोक, मैं तो बड़ा खुश हो जाता हूँ। तो मैं नीचे गया फुल स्पीड में, सुना है कि नीचे पाताल के पास सिर्फ श्री विष्णु रहते हैं, तो फुल स्पीड में नीचे गया, पाताल आ गया डेड एंड, इससे आगे तुम नहीं जा सकते। तो फिर देन आई टर्न इट बैक, देन ऊपर की ओर गया। तो ऊपर की ओर जाता था और जैसे पृथ्वी लोक को क्रॉस किया, स्वर्ग लोक की बाउंड्री आई डेड एंड, तो वहाँ और मैसेज आया ये रावण का तरीका है स्वर्ग में जाने का, इस तरह से स्वर्ग में नहीं जा सकते, इफ कैन नॉट एंटर सो इन दिस वे। अर्थात अभी साई ने और आज तक मैं वो गेम ठीक से खेल ही नहीं पाया, ऐसा ही होता रहता था। बट द पॉइंट इज अगर अपने इच्छा से अपने प्रयास से वर्तमान प्रयास से स्पेस सफर लेकर के चंद्र तक जाओगे, लेकिन आप स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। चंद्र लोग जो है वो स्वर्ग जैसा ही है, जैसे नंदन कानन है ना, तो वहां पर सुनंदन कानन होगा, आई डोंट नो द नेम, बट इट इज एज गुड एज स्वर्ग, एज गुड एज स्वर्ग। मून चंद्र जो दिखता है ना आपको स्वर्ग जैसा, तो प्रभुपाद ने कहा कि इतना सुंदर वर्णन है मून लोक का शास्त्रों में कि वो स्वर्ग जैसा है, और ये जाके लेके क्या है, पत्थर मिट्टी कुछ नहीं मिले। प्रभुपाद से इतना सारा खर्चा किया, इतना एनर्जी लगाया, इतना सब ले गए और जाके क्या क्या मिला उनको, धूल, थोड़ी सी मिट्टी लेके आए। Of course, then Prabhupada said that they are cheaters, they are not going, you know, gaye nahi hai. But there still, there is a big, you know, mass of people, they think, oh, hum jante hain, hamare vigyan ko to moon tak pahunch gaye. Prabhupada ka ek shishya tha, usko bahut vishwas tha scientist par. Wo baar baar aisa kehta tha, ki nahi nahi Prabhupada, ye log moon pe gaye honge, main bhi gaya tha, ye log moon gaye. To, Prabhupada uski bahut हंसी उड़ा रहे थे, जब भी वो आता था प्रभुपाद के पास, कहाँ गए थे, तो मून पे गए थे क्या, गो टू मून। सो ऑफ कोर्स ही वाज जस्ट मेकिंग फन, लेकिन स्वर्ग पे इस तरह से या मून लोक में इस तरह से हम सो 21 श्लोक तक हुआ, अभी आने वाले जो 22वां श्लोक है, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल नाउ. मैं कल 22 से लेकर के 34 का चैप्टर हम फिनिश करेंगे कल, लेकिन अभी हमारे पास 9 मिनट बाकी है. तो 9 मिनट में आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन थिंग कि ये श्लोक जो है जिसमें ऐसा कहा है कि महात्मा वस्तु माम पार्थ दैविम प्रकृति आश्रिता, तो महात्मा जो होते हैं वो दैविक प्रकृति के आश्रय में होते हैं. ये श्लोक को अपने शब्दों में श्रील प्रभुपाद को फिट करके दिखाइए. हाउ श्रील प्रभुपाद इज फुलफिलिंग ऑल द महात्मा क्वालिटीज ऑफ महात्मा. उसके नेक्स्ट वाला जो है ना श्लोक जिसमें पूरा उनका वर्णन है व्हाट दे डू, तो वो पूरा आप करके अपने शब्दों में बताइए. दो श्लोक 13 और 14 सब इंसिडेंट ऐसा नहीं रैंडमली नहीं, प्रभु जी बहुत प्रभुपाद बहुत प्रचार किया इसलिए बात है, नॉट नॉट दैट. गिव सम एग्जांपल ट्राई एक एक क्या दो तो बताए समथिंग
लिखा है कि महात्मा लोग होते हैं वो हमेशा देवी शक्ति में होते हैं. श्रील प्रभुपाद वो कभी बेवल्डर नहीं थे कि माया में नहीं थे, वो हमेशा देवी शक्ति के अंदर थे. जैसे ही गेव इतने सारे जो उनको शास्त्र थे उनका ये श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भगवान स्वयं आके उनको इतना बोलते थे भगवद गीता के बारे में. एंड ऑल्सो वन टाइम ये यशोमती नंदन प्रभु जी मैंने ग्लोरिफिकेशन में बोल रहे थे जैसे दैट श्रील प्रभुपाद इज क्लियर वन सेज कि जो भूत भविष्य और वर्तमान यानी कि वो सबके बारे में जानते हैं. श्रील प्रभुपाद ने जो हमें ज्ञान दिया वो खाली अभी के लिए नहीं, वो आने वाले 10,000 सालों के लिए दिए बुक्स. स्पेशली ये इंसिडेंट बताया था फिर कि गांधी जी थे तो उनके जो श्रील प्रभुपाद से बहुत सारे गांधी जी को क्या हुआ उन्होंने नेक्स्ट बर्थ, श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हाँ उनको नेक्स्ट बर्थ दिया वो भगवान के धाम में गए. तो फिर यशोमती ने कि मैं भी सोचता था कैसे ताकि फिर थोड़े टाइम पहले न्यूज़पेपर में उनका जो सर्वेंट था उनका इंटरव्यू पढ़ा था तो बोला कि एंड में उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया था. ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि हे राम, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था.
यस
सो इसलिए फिर उनको लगा कि श्रील प्रभुपाद को सब पता रहता था, वो सिर्फ ऐसे ही.
यस ही इज आचार्य इज एम्पावर्ड पर्सन ही नोस. प्रभुपाद वंस सेड दैट इफ यू विल कम टू नो हु आई एम देन यू विल बी फेंटेड. अगर आप लोग अगर पता पड़ेगा कि मैं कौन हूँ तो बेहोश हो जाओगे, बेटर यू डोंट नो. यस और कोई बात.
जब प्रभुपाद वहाँ गए और फर्स्ट टाइम जब डेटी के लिए उन्होंने टेंपल परचेज करने के लिए बहुत एफर्ट लगाया तो उनको यहाँ इंडिया से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था और वहाँ पे भी एक बिजनेसमैन का उन्होंने कोलैबोरेशन किया था कि उनसे सपोर्ट मिल गए, एक छोटा सा टेंपल बन जाए, राधा कृष्ण का डेटी एस्टैब्लिश हो जाए, तो प्रीचिंग हो जाए. लेकिन फिर भी इतना ये होने के बाद भी उन्होंने जो भगवान के ऊपर विश्वास था वो ऐसे ही रख के प्रीचिंग चालू रखा. उन्होंने फिर यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बोला कि आप यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो और उनसे जो पैसा आएगा उस पैसे से हम वहाँ मंदिर का निर्माण करेंगे. फिर वहाँ यहाँ इंडिया में भी तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, वहाँ पे जो बुक एजेंसी थी बॉम्बे में उन्होंने भी बोल दिया कि अभी ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमसे नहीं हो पा रहा है, हमको भी दूसरा बुक एजेंसी ढूंढना पड़ेगा जो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, बुक सेलिंग हो पाए. तो ऐसे इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी प्रभुपाद ने अपनी जो श्रद्धा थी भगवान के ऊपर विचलित नहीं थी, एट लास्ट उन्होंने वहाँ मंदिर का
बहुत डिटर्मिनेशन से काम किया श्री गुरु, यानी इतने फेलियर्स हमको फेस करने पड़े और फिर भी वो कभी डगमगाए नहीं. यहाँ पे इंडिया में थे तब भी कुछ हो नहीं रहा था, फिर भी कंटिन्यू अकेले वो उस टाइम पे प्रिंट कर देते बैक टू गॉडहेड और खुद ही अकेले ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते थे, फैमिली लाइफ में थे तब भी। और जब जाना था तो टिकट भी मिले तो उनको कार्गो शिप का मिला, और इतनी मुश्किल से यानी कि वो गए वहाँ पे, तो हार्ट अटैक आए, और वहाँ पे भी किसी को जानते भी नहीं थे, ओनली 40 रुपीज दे के गए थे, और फिर भी वहाँ पे एक साल तक वो कंटिन्यू करते रहे, यानी कैसे प्रचार करो। जब उन्होंने इस्टेब्लिश किया तो एक छोटा सा सेंटर था, बट स्टिल ही गिव हिम नेम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस।
डाउन टाउन लोरी स्ट्रीट जो मंदिर है प्रवेश उससे टॉमकिन स्क्वायर पर जो है वो 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो मैंने वो रिवर्स किया था वॉक, आई मीन चेयर से मैं था गुच्छे में, तो टॉमकिन स्क्वायर पर से 26 सेकेंड एवेन्यू तक हम क्रॉस किए थे पूरा वॉक करके, जो साइड रोड जो साइड जो होता है साइड वॉक उस पर। तो मैं उस समय यही बात आप बता रहे हो वही बात मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद इस तरह में उस समय शाम का समय था करीब 6:00 6:30 मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो तब मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद यहाँ पर अक्सर इस तरह से आया करते होंगे और ऐसे लोगों के साथ रहते होंगे, दिस काइंड ऑफ पीपल दैट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट प्लेस। अभी भी आज भी रात के समय पे आप उस स्थान पर नहीं जा सकते अभी भी, इट्स नॉट एडवाइजेबल टू गो इन मिडिल ऑफ द नाइट। यस, और कोई भक्त
मुझे नमस्कार जैसे इसमें देखा दिस वन मोस्ट रियल लाइक जब वो जा रहे थे उससे पहले यानी एक भक्त थे उन्होंने बताया था वृंदावन में और रात को ऊपर जाते थे और देखते थे किसी के रोने की आवाज़ आती है। एक बार यानी कि मूनलाइट थी तो उन्होंने देखा तो शिला रूप पाते वो जो शिला रूप गोस्वामी है राधा दामोदर टेम्पल वहाँ की समाधि के वहाँ पे रात को झाड़ू लगाते थे और क्राय करते थे और बोलते प्लीज रूप गोस्वामी वो सनातन गिव मी योर मर्सी सो दैट आई कैन फुलफिल दिस ऑर्डर दैट इज गिवन बाय माय स्पिरिचुअल मास्टर विच इज़ वेरी डिफिकल्ट ऐसे। और शांतिपुर में वो जाते थे तो वहाँ पे भी वो यानी कि चैंटिंग करते रहते थे, उनके टीचर्स आते रहते थे और वहाँ पे जो पुजारी थे उनको बोलते थे कि प्लीज़ मेरे को ब्लेस कीजिए, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने मेरे को इतना डिफिकल्ट ऑर्डर दिया है, मेरे को वेस्ट में जाके प्रीच करना है, मेरे को पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगा। इस तरीके से इतने हम्बल मूड में यानी कि प्रेयर करते रहते थे।
दिस इज द रियल मूड ऑफ आचार्य, दे टीच बाय एग्जांपल। प्रभुपाद अपने एग्जांपल के माध्यम से भक्तों को सिखाते हैं। शुद्रा आमी जो फेमस लोग है ना शुद्रामी दीनहीन, मैं क्षुद्र हूँ दीनहीन हूँ, मुझ में भक्ति भी नहीं है, भक्ति ना ही वेद ना ही, नाम है बड़ो धरो, मैं बहुत बड़ा नाम दे दिया है भक्ति वेदांत, ना मुझ में भक्ति है ना मुझ में ज्ञान है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा होगी हे कृष्णा भक्ति वेदांत नाम ये भी सार्थक हो, अगर तुम्हारी इच्छा है कि मेरा नाम भक्ति वेदांत सार्थक हो तो आप कृपा कीजिए, अवश्य ही तुम्हारा कोई कारण है। किला गिया नीले हेथा करो ये बेगति, मुझे इस स्थान पे अच्छे किछु कार्य तब यही अनुमान है, अच्छे किछु कार्य तब जरूर यहाँ पर मुझे लाने का तुम्हारा कोई प्लान है, अच्छे किछु कार्य तब यही अनुमान है, नाहे कहना आनी बेना यही उग्र स्थान है, अन्यथा तुम कृष्ण मुझे ये उग्र स्थान अमेरिका विशेष करके न्यूयॉर्क ऐसे उग्र स्थान में मुझे क्यों लाते तुम, Why would you bring me here? And this is the way of and वो जो प्रभुपाद का जो विनम्रता है ना वो विनम्रता सुपरफिशियल नहीं है, वो विनम्रता उनके हृदय से है और यही विनम्रता हम सब भक्तों को सीखना चाहिए, रियल विनम्रता, आर्टिफिशियल वाला नहीं है ना, वो प्लास्टिक स्माइल वाला नहीं है, हरे कृष्ण जी ऐसा नहीं होता है कई बार मंदिर में हम जाते हो आपके सामने आएगा इतना प्यार से, इतना बड़ा मुंह मेरा खोल करके श्री राधा से आधा झुक जाएगा प्रणाम करके, हरे कृष्ण रवि। फिर जैसे आगे जाएगा छाती टान के आगे चला जाएगा, अरे भाई क्या है यार तुम, सुपरफिशियल विनम्रता। बट वी वॉन्ट रियल विनम्रता, सच वास्तविक हृदय का तृणाद भी सुनिश्चय। अगर आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो विनम्रता की दूरी को कस के पकड़ के रखो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। सो वी स्टॉप हियर। तो अभी हम कल मिलेंगे, फिर 2 महीने का ब्रेक, रिंग वैकेशन, उसके बीच में आपकी मॉक टेस्ट और फिर जुलाई में आपका फाइनल टेस्ट। तो आप कभी मन से ध्यान से